आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और स्पेन के उनके हममनसब पेड्रो सांचेज आज वडोदरा में C-295 फौजी तैयारी की मैन्युफैक्चरिंग के टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का मुश्तरक तौर पर इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी गुजरात में भुज नलिया रेल लाइन के गेज तब्दीली के काम को भी मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार वादे के मुताबिक धान की खरीदारी करेगी और उसका एक दाना भी नहीं बचा रहेगा। जापान का बरसर इकतदार इत्तेहाद पार्लियामानी इंतखाबात में अक्सरियत से महरूम हो गया है। भारत की यशस्विनी घोरपड़े और कृतविका रॉय ने इटली में WTT फीडर कैगलियरी टेबल टेनिस टूर्नामेंट में खवातीन का डबल्स का खिताब जीता है। और भारत के पहलवान चिराग ने अल्बानिया के शहर तिराना में 23 साल से कम उम्र की कुश्ती की आलमी चैंपियनशिप में सोने का तमगा हासिल किया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और स्पेन के उनके हममनसब पेड्रो सांचेज आज वडोदरा में C-295 फौजी तैयारे की मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का मुश्तरक तौर पर इफ्तिताह करेंगे। ये भारत में फौजी तैयारों के लिए पहला प्राइवेट शोबे का ऐसा कारखाना होगा जिसमें तैयारे के कल पुर्जों को हतमी तौर पर जोड़ा जाएगा। टाटा के अलावा दिफाई शोबे के सरकर्दा कारखाने जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड नीज बहुत छोटे छोटे और दरमियानी दर्जे के प्राइवेट कारखाने भी इस मैन्युफैक्चरिंग में हिस्सा लेंगे। दोनों रहनुमा वडोदरा पहुंचने के बाद रोड शो का इनेकाद करेंगे और इसके बाद वो वफ्द की सतह की बातचीत करेंगे। तफसील हमारे नामानिगार से।
टाटा एयरबस प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया पहल के तहत फौजी तैयारों के लिए भारत का पहला प्राइवेट सेक्टर एरोस्पेस प्रोजेक्ट है। इससे भारत और स्पेन के दरमियान बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक दिफाई ताल्लुकात की अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अक्टूबर 2022 में वडोदरा फाइनल असेंबली लाइन FAL का संगे बुनियाद रखा था। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत में मजमुई तौर पर बनाए जाने वाले 56 C-295 फौजी तैयारों में से 40 तैयारे वडोदरा में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड तैयार करेगा, जबकि बाकी 16 तैयारे स्पेन की हवाबाजी की सरकर्दा कंपनी एयरबस के जरिए सीधे पहुंचाए जाएंगे। इस मरकज में तैयार किए जाने वाले हमाजहद फौजी ट्रांसपोर्ट तैयारों के जरिए 71 फौजियों या 49 से 50 पैरा ट्रूपर्स को ले जाया जा सकेगा। ये तैयारे भारतीय फजाइया के लिए देसी नौयत की जंगी तकनीकों से लैस होंगे। भारत में तैयार किए गए इस तरह के पहले फौजी जंगी जहाज के सितंबर 2026 तक मंजरे आम पर आने की उम्मीद है। इस मरकज में मैन्युफैक्चरिंग से असेंबली, टेस्ट और क्वालिफिकेशन और पहुंच और हवाई जहाज के मुकम्मल रखरखाव तक पूरा इको निजाम तश्कील दिया जाएगा। इस तकरीब के बाद दोनों रहनुमा वडोदरा के मशहूर लक्ष्मी विलास पैलेस जाएंगे और वफ्द की सतह की बातचीत करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए शबाना रहमान।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज गुजरात के अमरेली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गेज की तब्दीली के भुज नलिया रेल लाइन को मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। 101.4 किलोमीटर का ये रेल लाइन प्रोजेक्ट तकरीबन 1,100 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मगरबी रेलवे के ताल्लुकात आम्मा के चीफ अफसर विनीत अभिषेक ने बताया कि मजकूरा प्रोजेक्ट किफायती ट्रांसपोर्ट फराहम करेगा और इससे गुजरात के कच्छ खत्ते में इकतसादी सरगर्मियों को फरोग हासिल होगा।
ये जो प्रोजेक्ट है भुज से नलिया, ये 101.4 किलोमीटर की प्रोजेक्ट है। पहले यहाँ मीटर गेज थी। भारतीय रेल का जो एक यूनिगेज पॉलिसी है कि हमारे सारे गेज जो है ब्रॉड गेज होने चाहिए, उसी के तहत हमने इसको गेज कन्वर्जन किया है। कुल 1100 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और ये कुल 11 स्टेशन को ये जोड़ता है। ये एक स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है।
हमारे नामा निगार ने खबर दी है कि इस प्रोजेक्ट में 24 बड़े पुल, 254 छोटे पुल, 3 रोड ओवर ब्रिज और 30 रोड अंडर ब्रिज शामिल हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
ये प्रोजेक्ट गुजरात के कच्छ जिले की सामाजिक इकतसादी तरक्की को वसत देने में अहम किरदार अदा करेगा। भुज नलिया रेल लाइन प्रोजेक्ट बाकी मादा रेल नेटवर्क के साथ बिला रुकावट ब्रॉडगेज रेल कनेक्टिविटी फराहम करेगा। इससे रन ऑफ कच्छ में सियाहत को फरोग हासिल होगा और रोजगार के मौकों में इजाफा होगा। इससे खित्ते में वाकई सीमेंट की सनअतों को भी फायदा हासिल होगा। इसके अलावा प्रोजेक्ट से कच्छ जिले में बंदरगाहों के जरिए बरामदात और बरामदात को जहत हासिल होगी। गुजरात से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के लोकसभा के मेंबर पार्लियामेंट तेजस्वी सूर्या की आयरन मैन चैलेंज कामयाबी के साथ मुकम्मल करने पर उनकी तारीफ की है। वज़ीर-ए-आज़म ने इसे एक काबिले तहसीन कारनामा करार दिया। सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने उम्मीद जाहिर की कि जनाब सूर्या की हुसूलियाबी से तंदुरुस्ती से मुतालिक सरगर्मियों को जारी रखने के लिए मजीद नौजवानों को तहरीक हासिल होगी। आयरन मैन गोवा 70.3 एक ऐसा मुकाबला है जिसमें 50 से ज्यादा मुल्कों के एथलीट्स ने हिस्सा लिया। आइंदा दिवाली और छठ पूजा त्यौहारों के दौरान मुसाफिरों की इजाफी भीड़ भाड़ के पेश नज़र शुमाली रेलवे ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन और आनंद विहार पर भीड़ के खसूसी बंदोबस्त और कंट्रोल से मुतालिक इकदाम नाफिज किए हैं। दोनों स्टेशनों पर इजाफी टिकट काउंटर, खुदकार टिकट वेंडिंग मशीनों, पूछताछ के काउंटर्स, खिदमात फराहम करने, पीने के पानी और मोबाइल टॉयलेट से आरास्ता एक मखसूस इलाका तश्कील दिया गया है ताकि मुसाफिरों की सहूलतों में इजाफा किया जा सके। मीडिया से बात करते हुए शुमाली रेलवे के ताल्लुकात आम्मा के चीफ अफसर हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि रेलवे ने दाखिली सतह पर ही मुख्तस और गैर मुख्तस सीटों के मुसाफिरों को अलग अलग कर दिया है। रेलवे ने माजी के तजुर्बे की बुनियाद पर मुख्तलिफ इंतजाम किए हैं।
दो मुख्य स्टेशन है दिल्ली एरिया के जहाँ से पूर्व की तरफ मूवमेंट होता है, पहला नई दिल्ली, दूसरा आनंद विहार। तो वहाँ पर इस बार हम लोगों ने पंडाल बनाए हैं। पंडाल में जो हमारा होल्डिंग एरिया होगा उसमें हमने खान पान की, पीने के पानी की, टिकटिंग की और इन्फॉर्मेशन सिस्टम की व्यवस्था करके रखी है। हमारा जो अनरिजर्व और रिजर्व पैसेंजर है उसको हम लोगों ने सेग्रीगेट कर दिया है। ईस्ट साइड बाउंड हाईली पेट्रोनाइज ट्रेन है जिनकी ऑक्यूपेंसी ज्यादा है, उनको हम सभी नई दिल्ली के प्लेटफॉर्म 16 नंबर से चला रहे हैं।
रेलवे के मुताबिक बिहार संपर्क क्रांति, संपूर्ण क्रांति, वैशाली एक्सप्रेस और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 16 से और डिब्रूगढ़ राजधानी एक्सप्रेस और जम्मू राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 15 से, जबकि न्यू जलपाईगुड़ी एक्सप्रेस और हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 14 से रवाना होंगी। उत्तर संपर्क क्रांति एक्सप्रेस और लखनऊ मेल प्लेटफॉर्म नंबर 12 से रवाना होंगी। मुसाफिरों को मशवरा दिया गया है कि वो आखिरी मिनट की भीड़भाड़ से बचने के लिए ट्रेन रवाना होने के मुकर्रर वक्त से कम अज कम एक घंटा पहले स्टेशन पहुंच जाएं ताकि ट्रेन में दाखिल होने के बिला रुकावट अमल को यकीनी बनाया जा सके। सारिफीन के उमूर, खुराक और तकसीम आम्मा के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सरकार खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए मुकर्रा 185 लाख मैट्रिक टन LMT धान की खरीदारी करेगी और धान का एक दाना भी बचा नहीं रह जाएगा। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब जोशी ने ऐलान किया कि चावल मिलों की शिकायतों के इजाले के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जल्द ही शुरू किया जाएगा ताकि फरीकों को दरपेश मुश्किलात को तेजी से निपटाया जा सके। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इसके अलावा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स गारंटी स्कीम के तहत 31 लाख LMT मैट्रिक टन जखीरे की गुंजाइश पैदा की जाएगी।
भारत सरकार डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड FCI जो आश्वस्त किया है 185 लाख टन ना पैडी हम प्रोक्योर करेंगे। एज ऑन डेट 14 लाख मेट्रिक टन तक हमारे पास स्पेस है और हम वीट और राइस जो पंजाब में है उसको इवैक्यूएशन शीघ्र गति से कर रहे हैं। हमने 31 लाख मेट्रिक टन स्टोरेज कैपेसिटी अंडर PEG स्कीम, प्राइवेट एंटरप्रेनर गारंटी स्कीम पे हम स्पेस क्रिएट कर रहे हैं।
ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का आज आखिरी दिन है। कांग्रेस, शिवसेना, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार ने कल उम्मीदवारों की अपनी फहरिस्त जारी की। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की क्यादत वाली शिवसेना ने कल 20 उम्मीदवारों की दूसरी फहरिस्त जारी की। मिलिंद देवड़ा वर्ली में शिवसेना UBT लीडर आदित्य ठाकरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस के साबिक मेंबर पार्लियामेंट संजय निरुपम डिंडोशी असेंबली सीट से, जबकि नीलेश राणे कुडल सीट से शिवसेना के उम्मीदवार होंगे। पार्टी ने कुल 65 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। कांग्रेस ने कल 14 उम्मीदवारों की चौथी फहरिस्त जारी की है और वो अब तक 101 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। इधर झारखंड में असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले के लिए कागजात नामजदगी की आज जांच पड़ताल की जाएगी। 43 असेंबली हलकों में अगले महीने की 13 तारीख को मुनक्किद होने वाली पहले मरहले की पोलिंग के लिए 805 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। उम्मीदवार इस महीने की 30 तारीख तक अपने नाम वापस ले सकते हैं। वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। झारखंड असेंबली इंतखाबात में शहरी इलाकों में रायदही के तनासुब में इजाफे की खसूसी कोशिश के तहत शशुम जमात से 12वीं जमात तक के तलबा اپنے سرپرستوں کو خط لکھیں گے جس میں وہ انہیں اپنے حق رائے دہی کا استعمال کرنے کی اپیل کریں گے۔ چیف الیکٹورل افسر کے روی کمار نے بتایا کہ ریاست بھر کے سرکاری اور پرائیویٹ اسکولوں کے طلبہ آج صبح 11 بجے سے 12 بجے کے درمیان ریاست بھر میں اپنے سرپرستوں کو یہ خط لکھیں گے۔ انہوں نے بتایا کہ طلبہ اور ان کے سرپرست اس خط کو شام 5 بجے سے 7 بجے کے درمیان سوشل میڈیا پلیٹ فارم #ممی پاپا ووٹ 2 کے تحت شیئر کریں گے۔ چیف الیکٹورل افسر نے بتایا کہ یہ قدم رائے دہندگان میں بیداری اور ان کی شمولیت بڑھانے والے پروگرام SVEEP کا حصہ ہے۔
اس سوشل کیمپین میں آپ کا 7ویں سے 12ویں تک اسٹوڈنٹ ہے یہ شامل ہوں گے، وہ اس میں اسی دن کا لے کر ایسے ریٹنگ کمپٹیشن بھی سبھی اسکولوں میں آیوجن کیا جا رہا ہے، وہ سوشل میڈیا کیمپین کا مادھیم سے یہ 22ویں متداتا ہے اپنے ماتا پتا سے اپیل کریں گے آنے والا ودھان سبھا چناؤ میں متادھکار کا پریوگ کرنے کے لیے۔
بہار میں وزیر اعلیٰ نتیش کمار برسر اقتدار NDA کی حلیف جماعتوں کے ساتھ انتخابات سے متعلق معاملات اور لائحہ عمل پر تبادلہ خیال کے لیے ایک اہم میٹنگ کریں گے۔ اگلے سال ہونے والے بہار اسمبلی انتخابات کے تناظر میں اس میٹنگ کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ اتحادیوں کے درمیان انتخابات سے متعلق تبادلہ خیال کو سمت فراہم کرے گی۔ جناب نتیش کمار جنتا دل یونائٹڈ کے صدر ہیں۔ اس میٹنگ میں BJP اور JDU کے علاوہ LJP، رام ولاس، ہندوستانی عوام مورچہ اور راشٹریہ لوک مورچہ جیسی NDA کی حلیف جماعتیں حصہ لیں گی۔ سبھی پارٹی صدور، سینئر پارٹی رہنماؤں، اراکین پارلیمنٹ، اراکین اسمبلی، قانون ساز کونسل کے اراکین اور ضلع صدور سے میٹنگ میں شرکت کرنے کو کہا گیا ہے۔ فوجی کمانڈروں کی دوسری کانفرنس 2024 کے دوسرے مرحلے کا انعقاد آج نئی دلی میں کیا جائے گا۔ ایک سال میں 2 بار منعقد ہونے والی اس سال کی پہلی کانفرنس کا انعقاد نئی دلی میں اپریل میں کیا گیا تھا، جبکہ دوسری کانفرنس آن لائن وسیلے سے کی جا رہی ہے۔ کانفرنس کے پہلے مرحلے کا انعقاد سکم کے شہر گینگٹوک میں کیا گیا تھا۔ دوسرے مرحلے میں بھارتی فوج کے سینئر حکام 2 دن تک یکجا ہوں گے۔ وزارت دفاع نے کہا ہے کہ کانفرنس کے دوسرے مرحلے میں تبدیل ہوتے ہوئے جغرافیائی اور سیاسی منظر نامے پر مذاکرات کیے جائیں گے، جس کے بعد کارروائی سے متعلق معاملات پر غور و خوض کیا جائے گا۔ جاپان کی پارلیمنٹ میں برسر اقتدار لبرل ڈیموکریٹک پارٹی LDP کی قیادت والے اتحاد کی اکثریت ختم ہو گئی ہے۔ انتخابات کے عارضی نتائج کے مطابق اپوزیشن پارٹیوں کو ایوان زیری میں آدھے سے زیادہ سیٹیں ملی ہیں۔ ابھی 22 سیٹوں کا اعلان باقی ہے۔ کشتی میں بھارت کے چراغ نے البانیا کے تیرانا میں جاری U23 کشتی عالمی چیمپئن شپ 2024 میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ چراغ نے مردوں کے 57 کلو گرام فری اسٹائل زمرے میں کل رات کرغستان کے کھلاڑی کو 4-3 سے ہرا دیا۔ وہیں ٹیبل ٹینس میں بھارت کی یشسوینی گھور پڑے اور کرتویکا روئے نے اٹلی میں جاری WTT فیڈر کیگلیئری 2024 ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ میں خواتین کے ڈبلز کا خطاب جیت لیا ہے۔ یہ تھی خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں شبانہ رحمان۔
شکریہ ضمیر۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخبارات نے وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے کل من کی بات پروگرام کے 115ویں نشریے میں دیے گئے بیانات کو سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ پرتاپ نے وزیر اعظم کے اس بیان کو پہلی بڑی خبر بنایا ہے کہ بھارت اینیمیشن میں نیا انقلاب لانے کی راہ پر گامزن۔ ادھر روزنامہ ہندوستان ایکسپریس نے ان کے اس بیان کو اولیت دی ہے کہ ہم وطنوں کو بھارت کی خود انحصاری کا جشن منانا چاہیے۔ روزنامہ انقلاب نے بھارت اور چین کے درمیان LAC پر پیٹرولنگ کے معاہدے کے تعلق سے وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کے اس بیان کو نمایاں کیا ہے کہ فوجیوں کی واپسی پہلا قدم ہے، اگلا مرحلہ چین کی سرحد پر کشیدگی کو کم کرنا ہے۔
اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی اور اسپین کے ان کے ہم منصب پیڈرو سانچیز آج وڈودرا میں C-295 فوجی طیارے کی مینوفیکچرنگ کے ٹاٹا ایئر کرافٹ کمپلیکس کا مشترکہ طور پر افتتاح کریں گے۔ وزیراعظم مودی گجرات میں بھج نلیا ریل لائن کے گیج تبدیلی کے کام کو بھی ملک کے نام وقف کریں گے۔ مرکزی وزیر پرہلاد جوشی نے کہا ہے کہ سرکار وعدے کے مطابق دھان کی خریداری کرے گی اور اس کا ایک دانہ بھی بچا نہیں رہے گا۔ جاپان کا برسر اقتدار اتحاد پارلیمان انتخابات میں اکثریت سے محروم ہو گیا ہے۔ بھارت کی یشسوینی گھور پڑے اور کرتویکا روئے نے اٹلی میں WTT فیڈر کیگلیئری ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ میں خواتین کا ڈبلز کا خطاب جیت لیا ہے۔ اور بھارت کے پہلوان چراغ نے البانیا کے شہر تیرانا میں 23 سال سے کم عمر کی کشتی کی عالمی چیمپئن شپ میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔